किंतु माता के प्रति भी रुचि है और रुक्मिणी के प्रति भी आदर है और उनको भी प्रसन्न करना चाहता है।
नारायण भगवान वैकुंठ में उनको भी प्रसन्न करना चाहता है तो वो बीच में लड़ झड़ा जाएगा। कृष्ण की भक्ति ब्रज में नहीं मिलेगी, दीक्षा में अटक जाएगा। इसलिए शुद्ध रूप में श्रवण करके हमको अग्रसर होना है। संसारिक बातों को तो छोड़ी दीजिए, ब्रह्मांड में जितनी लालसार कामना बात इसको तो छोड़ दीजिए। परमार्थ में भी एक सीधा रास्ता, उसमें भी कोई चाहेगा यशोदा मैया जैसे बात्सल्य हो, सखाओं जैसा कृष्ण से खेले भी, गोपियों जैसे, ये नहीं होगा। एक उसमें जीव का स्वरूप एक ही, भजन करते 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 जब ये सब चीजें दूर हो जाती हैं, माया का पर्दा हट जाता है, अपने आप वो भाव हृदय में जागृत होता है। और जब तक नहीं होता तब तक समझो कि हम अभी जा रहे हैं, हमारा भजन अभी शुद्ध नहीं चल रहा। जब हमारे ये छह चीजों को जो बतलाया है तो और भी चार प्रकार के अनर्थ है। अनर्थ माने क्या?
जो अर्थ नहीं है।
अर्थ माने होता है इष्ट, इस मैं जो मैं चाहता हूँ, अनर्थ जो मैं नहीं चाहता हूँ, वो जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, जिसको हम नहीं चाहते हैं वो है अनर्थ। अर्थ माने धन संपत्ति, जिस चीज को, अर्थ माने रुपया पैसा ही नहीं, कोई भी चीज को हम चाहते हैं वही हमारे लिए अर्थ। तो अर्थ हमारा क्या है? भक्ति, कृष्ण के प्रति प्रेम। कृष्ण के प्रेम के बदले जो चीज दूसरी चीज है जो उसके विपरीत है उसको कहते हैं अनर्थ। उसके लिए जो बाधक है, क्या बाधक है? वो तो छह चीजें बाधक थी, उसको बतलाया रंगनी तक, तरंग रंगनी तक। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, सूक्ष्म रूप में जो बाधाएं हैं वो क्या बाधा? कहते हैं कि वो चार प्रकार की बाधाएं हैं। पहला है दुष्कृति उत्थव, जो हमने पूर्व जन्म में इस जन्म में दुष्कृतियां, दुष्कृति जो खराब जो कार्य किए हैं, जिसको साधारण रूप में पाप कहते हैं, अनाचार कहते हैं, ये सब जो हमने की और उसका फल अभी आ रहा है, वो भजन में बाधा देता है। जैसे हमने पूर्व जन्म में किसी से हिंसा द्वेष की, उसे मारा, उन्हें जान से मार डाला, या जान से नहीं मार डाला, उसको अपमान किया बहुत बार, वो तो अपमान आएगा ना, जरूर आएगा, रिएक्शन आएगा। एक सुरथ नाम के राजा थे, उन्होंने स्वर्ग पाने के लिए लाखों बकरे और भेड़ों की बलि दी, एक दो नहीं लाखों को। जब मृत्यु का समय आया तो स्वर्ग में जाने लगे, क्योंकि ये यज्ञ किया है ना, तो जितनी जानवरों को मारा था एक लाइन में खड़े होकर के और फरसे लेकर के खड़े हो गए। पहले जो आपने मारा है इसका फल भोगते जाइए, तब जाइए वहां, अब बस खड़े हैं, बस मारे और दिख करके छटपट कर लाखों की कतार देखकर के कम काफी मरे तो नहीं, क्योंकि वो भोग का शरीर, ये तो मर गया, फिर भोग का शरीर लिया, जैसे स्वप्न के आदमी को काटते हैं ना और उसमें दुख होता है, उठने पर तो कुछ हुआ नहीं किंतु दुख शरीर काटता है, उसमें भी दुख होता है जो शरीर में होता है, स्वप्न में भी किसी को कोई कष्ट नहीं होता है। तो वैसे ही वो देख रहा है लाखों लोग खड़े हैं पकड़े हुए सब और भेड़ और उनको मारने के लिए तैयार, लेकिन कांपने लगते गिर गए। नारद जी ने उनको दिखाया अपने जोग बल से, ये देखो हिंसा का फल क्या है, स्वर्ग तनाजन कितने दिन पर अधिक जाएगा, इसे कभी भी हिंसा इत्यादि नहीं करनी चाहिए। तो उसने जो हिंसा की अब वो भजन करने के समय में वो आती है, अरे हाय हाय मैंने तो कुछ किया नहीं, ये दुख क्यों आ रहा है, दुख आ रहा है यूं ही नहीं आ रहा है, तुमने निमंत्रण दिया है, दुख का पहले जो किया ना वो सब आ रहे हैं। इसलिए दुष्कृति, जो जो आपने खराब काम किया है, छोटा बड़ा अच्छा बुरा जो किया है, वो सब उसके फल आएंगे, ये दुष्कृति के द्वारा आए हुए ये फल है। इस भजन में कभी कभी ये बाधा देते हैं। उस बाधा से यदि कोई घबरा गया था जिस ठाकुर जी को उठा करके जमुना में फेंका पानी में फेंका हमारा बेटा मर गया, हमने इनको पुकारा हजार बार कहा जो ठाकुर जी है सालव राम जी हमारे बेटे की रक्षा कर दिया, बेटा हमारा रक्षा नहीं है, कैद उठा बेटा ये पत्थर सीधा है हम झूठ मूठ नहीं पीने देंगे। हो गया भजन विचलित हो जाता है, इसलिए ये सब बाधाएं हैं, ये दुष्कृति कुछ है। ऐसे मैंने एक संक्षेप में बताया लाखों ऐसे क्रियाएं हो सकती हैं जो अभी हम करते हैं, इसलिए आगे के लिए नहीं करना चाहिए। अंडा खाना, गोश्त खाना, बड़े बड़े मांस के क्या कटलेट और क्या क्या बनते हैं, बड़े आराम से खाते हैं। आप मिस्र के हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे आपको बड़ी सुंदर सुंदर चीजें मिलेंगी, क्या मुर्गी का भी बच्चा भी एकदम छोटा कोमल, उसको चाकू से काट करके नींबू दे करके लमन नमक दे करके चना जैसे खाते हैं ना कच्चा, नहीं समझते हैं कि में कोई दोष है, अंडे में कोई दोष नहीं, इसमें सफेद आलू समझते हैं कि तो उसका नतीजा इतना भोगना पड़ता है जहां से मैं पीस देगा वो काम नहीं समझते हैं। कहते ये सब बेकार की बातें हैं, खाओ पियो मौज करो, एक ड्रिंक एंड डू मेरी जो होगा सो देखो, कोई चिंता नहीं, इसको पापी नहीं समझते हैं, वो हत्याएं हो रही हैं, एक ही नहीं उसको बच्चे को मार दिया जाता है। अरे अपने भोग को संभालो ना, संयत रहो, ये तो नहीं उसको हत्या करता है, ये तुम्हारे बस की बात है नहीं, बच्चा बना देना कि ये सब अपराध होते हैं। अभी थोड़ी सी भजन में ना के किस कारण से रुचि हो गई, क्योंकि ये सब बात पाप आता है ना, ये बात है उसमें भी धैर्य धारण करके चलना चाहिए, भगवान का भजन किसी भी स्थिति में न छोड़ो, तब तो इसे बच जाएंगे। ये दुष्कृति उत्थर और सुकृति उत्थर, हमने जो अच्छे कर्म किए हैं उसका फल भी आएगा, यदि दुख बिना बुलाया आता है तो सुख भी आएगा भाई, इसलिए संत पुरुष लोग हम लोग उसके लिए चिंता नहीं करते, हम कभी संत नहीं है किंतु हम लोग भी उसके लिए चिंता नहीं करते, जो कल कहां से भोजन मिलेगा इसके लिए चिंता नहीं, कपड़े कहां से आएंगे और सब क्या होगा, हमारा कर्म जो ये शरीर भी आया है तो बचपन से लेकर के अंत तक ये जरूर जैसे दुख आ रहा है बिना बुलाए दुख भी आए, निश्चिंत होकर के वो भजन करते हैं, भगवान पर सब कुछ समर्पण कर देते हैं, जो होगा जो होना है वो तो होगा ही, इसलिए दुष्कृति युद्ध हुआ और सुकृति युद्ध है, जो तुमने पुण्य के फल के काम जीते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ पुण्य का काम करता है, अनाशित होता है, हमारी हिंदू संस्कृति ऐसी है, किसी को गरीब आते हैं उनको दे दिया, कभी कभी उसे भगा भी देते हैं, गाली गलौज भी करते, कभी मारपीट भी देते हैं, जब पुरुष लोग नहीं रहते तो यदि कोई भिखारी अतिथि आ जाता है तो महिलाएं बड़े प्रेम से, और यदि उसने कह दिया जैसे मैं थोड़ा सा हाथ देखना जानता हूं तब तो कोई बात नहीं, हम लोगों से बहुत बार लोग बहुत सब लोग पूछते हैं महात्मा जी आप हाथ देखना जानते हैं, प्रणामी लेकर के पहले और तब वो पूछेंगे, बल्कि वो पूछते भैया हम तो पूछे ये सब नहीं, हाँ उसको उलट देना हम जानते हैं, दीदी को हम लोग उलट देंगे हरिनाम के द्वारा, तुम हरिनाम करो तुम्हारा यदि बुरा दिन है वो सब ठीक हो जाएगा, ये तो हम जानते हैं, किंतु तुम्हारा क्या होगा क्या है तुमने क्या किया ये सब हम नहीं, जानने पर भी नहीं बतलाना, हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ क्या किया है, एक आदमी को बीज चढ़ा है तो समझेंगे नहीं जो सांप या बिच्छू ने काट दिया है या कुछ ऐसी बात है, यदि नाक से बलगम आ रहा है तो हम समझ जाएंगे नहीं जिसको कोड लगा है, तो वैसे संत पड़ोस लोग जान जाते हैं जैसे पूर्व जन्म के क्या कर्म है कैसे क्या है और उसका कैसे होगा, तभी इसकी झंझट में नहीं जाते, इसलिए सुकृति के द्वारा जो पुण्य है और पुण्य के द्वारा जो कर्म है उसका फल भी तो आएगा, क्या आप कोई भी बिजनेस नहीं कर रहे और काफी रुपए पैसे आ रहे हैं, कुछ भी नहीं करते तभी आ रहा है, और टाटा बिरला के घर में जन्म हो गया वहां पर कुछ भी नहीं करते हैं तभी देखिए कितना संपत्ति, अब हिंदुजा ब्रदर्स लोग हैं, मैं बंबई में था तो सुना वो हमको ले भी गए थे अपने घर में, तो उनका एक लड़का था एक ही किदार बड़े भाई का और एक ऑस्ट्रेलियन लड़की पर हो गया उसे प्रेम कर लिया और उसने इनकार कर दिया कि हम इंडियन से शादी नहीं करेंगे, ये कुछ श्यामला और वो थी गोरी, बस वो तो गोरा और सफेद था वो, बस उसने सुसाइड कर लिया, बीज खा लिया मर गया, बड़ा तबाही उनके वंश में परिवार में बड़े दुखी। तो सुख भी आना होगा ना, सुख आज भी हमने काम किया था जरूर आएगा, उसी सुख और के झमेले में सुख आया और भूल गए। हम तो जाके घर में जन्म हुआ और खूब सुखा रहा, भजन होने देगा। हमारे संत लोग बेवकूफ नहीं थे जो बड़े बड़े राज्यों को छोड़कर उनका भजन करने के लिए, ये सब अतिरिक्त अर्थ अतिरिक्त प्रतिष्ठा इत्यादि सभी चीज यदि ये उसमें प्रभाव नहीं है कि भगवान के भजन की सेवा में लगा दें तो उसको डुबा देगा। इसलिए सुख की माने पुण्य जन्म पूर्व जन्म के पुण्यों से जो वैभव प्राप्त हुआ है वो भी भजन में बाधा देगा जो आएगा तो अधिक। इसलिए जितनी जरूरत है उतनी चीज हमारे संत लोग या हमारे पूर्व पूर्व के हमारे वंशज लोग ऋषि महर्षि घर वास्त भी उतना ही संग्रह करते थे जितना जरूरत। मधुमक्खी का छाता सात वर्ष मधु फूलों से लिया, हम लोग तो मधु नहीं फूलों से ले सकते, बड़ी मुश्किल से लिया। और छाता ये ग्यारह के दिन में बैठ करके आराम से मधु का पान कर। और एक नटखट बंदर आया और बंदर का भाई वो बानर नर ही आया डहेलिया या बानर ही आया और उसको तोड़ करके कपड़े में निचोड़ करके ऐसे दबाया और लाखों मधुमक्खियां उसी के अंदर में मधु होकर के रस उनका निकल गया।
राम नाम भक्ति
इस तरह से हम लोगों की धन संपत्ति को भी ऐसा नहीं बनाए मधु को जैसा था नहीं तो ये हमारा पाप। इसलिए कहते हैं कि सुकृति उत्थ सुकृति से आने वाले जो सुख है आएंगे किंतु उनको कैसे रखो, जनक की भांति अम्बरीश महाराज की भांति पांडवों की भांति उसमें हमको मरना न पड़े, उसका सदुपयोग करें। किस रूप में, परिवार का भरण पोषण तो करेंगे, ठाकुर जी की सेवा हो, संतों की सेवा हो, हमारा परमार्थ हो इसके लिंक में किया जाए। कोई चीज भी मना नहीं है, कोई भी वस्तु भगवान का विरोधी नहीं है, धन भी नहीं कुछ भी नहीं, उसका व्यवहार ही दोष, उसका सदव्यवहार उसको ऊपर उठा देगा और उसका दुर्व्यवहार करेंगे। एक चाकू है उसे सेब काट लो, उसके छिलके उतार करके खाओ, सब्जी बना लो और उसके सदुपयोग है। और यदि अपने छुरी को लिया अपने या अपने मित्र के गले में दिया तो ये दुर्व्यवहार, तुमको मरना पड़ेगा। इसलिए इसे सब चीज का सदव्यवहार होना चाहिए। साधारण लोग अर्थ तो कमाना जानते हैं किंतु उसका सदव्यवहार नहीं करना जानते। हमारे गुरु जी कहते थे अर्थ कमाना सहज है किंतु उसका सदुपयोग ऐसा करना जो बंधन में न लाए, मरते समय उसी की चिंता करते करते मर जाए या कहीं खर्च हो गया कहीं नष्ट हो गया तो उसी की चिंता में मर गए, इसकी क्या व्यवस्था हुई। एक आदमी ने करोड़ों रुपये कमाए और मरते समय चिंता क्या करूं, संतान तो है नहीं, मैं इसकी क्या व्यवस्था करूं, संतान भी है तो एकदम बदमाश। मथुरा में एक ऐसा ही परिवार है, एक ही एक लौटा लड़का महाबदमाश महाबदमाश बिजनेस आया है, वो बूढ़े हो गए देखते हैं किंतु वो नहीं जाएगा, घर में पड़ा रहेगा, बदमाशी करेगा, पैसा मांगे रहेंगे तो और उत्पात करेगा। अब कहते हैं कि लड़का क्यों हुआ, ये बल्कि नहीं होता या जन्म करके ही मर जाता तो अच्छा, कभी बंदूक भी काम खाएगा, मार देंगे यदि पैसा नहीं देंगे, कार खरीद दिया अच्छा चले लोग कार उसकी काम मैं नहीं करूँ। तो यह सुकृति उत्थव हुआ, इसलिए यदि है भी तो इसको सदव्यवहार दिया जाए, जो आर्थिक भी कल्याण हो आर्थिक भी कल्याण हो। ये दो हुआ, तीसरा हुआ अपराध, वो सब तो पाप जैसे है, उसे रिहाई हो सकती है किंतु अपराध वाला जैसे भयंकर है, बहुत भयंकर, ये चौपट कर देगा। इसलिए अपराध ना, अपराध कुछ प्रकार के हैं, एक होता है सेवा अपराध, भक्ति राज्य में थे इसलिए बतला रहे सेवा अपराध, ठाकुर जी की सेवा करी करी बाल गोपाल या राधा कृष्ण या जैसे भी सबके घर में कुछ जरूर होता होगा, बहुत से जब अधिकांश मंदिर है विशेष करके त्यागी लोगों के लिए जो त्याग करके और संन्यास का बाना या ब्रह्मचारी का बाना पालन करके त्यागी का रह करके घर बार माता पिता को छोड़ करके आए, ऐसे लोगों के लिए अपराध बहुत भयंकर है, अपराध नहीं होता। अपराध क्या है? सेवा अपराध। ठाकुर जी को घर में रखा, यहाँ है ये ठाकुर जी हैं, ये मूर्ति है या ठाकुर जी है या स्टैचू है, क्या चीज है ये? स्टैचू तो नहीं। स्टैचू में और मूर्ति में, विग्रह में क्या अंतर होता है, ये समझना चाहिए भक्त को जो भजन करता। साधारण नहीं समझेंगे, मनोरंजन के लिए जो चीजें रख दी जाती है वो है स्टैचू के समान। पिताजी के स्टैचू, माता जी के स्टैचू, सुभाष चंद्र बोस की, जवाहरलाल नेहरू की, अभी आ रहा था देखा राजेंद्र बाबू का वो स्टैचू कहीं रास्ते में लगा हुआ था, कहीं गांधी जी का अपने लोटा क्या सांडा वो लेकर के और चल रहे हैं ऐसे धोती पहने हुए, ये सब स्टैचू है। किसी का यहीं तक स्टैचू होता है, हम लोगों के वैष्णव धर्म में यहाँ तक का नहीं होता है, बैठा हो या खड़ा हो। तो ये शिव विग्रह काम करके चलते हैं। शिव विग्रह माने भगवान, प्रतिमा न हो, तुम्हें साक्षात सनातन शिला जो है टुकड़ा, वो काला सा वो पत्थर नहीं है, जहां पाल से ठोकर मार दिया गए तक जहन्नम में, देखने में पत्थर ही जैसा, किंतु सालग्राम उसके चिन्ह सब बदलाए गए। ठाकुर जी को सालग्राम शिला को, राधा कृष्ण को यहाँ पर रख दिया, गुरु जी के भी रख दिया, और जूता चलते हुए लगाते हुए भाई आराम से सिगरेट फूकते हुए भजन भी करते हैं। ये क्या हुआ, सेवा अपराध हुआ कि नहीं हुआ? एक पूज्य व्यक्ति आ जाए, कोई बड़ा अफसर आ जाए या पिताजी आ जाए, उनके सामने सिगरेट पिएंगे और इनके सामने ये मूर्ति के सामने करेंगे तो इसको ये समझे कि आप स्टैचू समझ रहे हैं, तो इसलिए नहीं रखना ही अच्छा है। और यदि रखते हैं तो ठीक से रखिए, उसका पूजन कीजिए, सेवा अपराध नहीं है। ठाकुर जी को यहां रखा और किसी ने कुछ गड़बड़ी किया, उसे एक थप्पड़ मारा, किसी को डांटना, किसी को अधिक प्रेम करना ठाकुर जी के सामने नहीं, क्यों? डांटने वाले फटकारने वाले प्रभु हैं, तो प्रभु शासन नहीं करते तुम शासन करेगा, तो इसका मतलब है जो वो पत्थर का है वो शासन नहीं कर सकता, वो इसमें प्रभाव नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। ये सब क्या हुआ? सेवा अपराध। अभी ऐसे 32 प्रकार के सेवा अपराध हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। जो साधक उन्नति करना चाहता है, भजन में प्रवेश करना चाहता है, खूब अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए। ठाकुर जी के सामने पैर पसार देना, कड़ी कड़ी बात बोलना, शोक करना, कोई कुछ हो गई बात शोक कर रहा है, हाय मैं तुम्हारी गई, मैं तुम्हारी गई, वो ठीक से विचार करके जो कुछ हो रहा कर रहे हम उसके लिए शोक करते हैं, इसलिए ये सब सेवा अपराध होगा। किसी को दंड देना या किसी को अभी कुछ, गुरु जी बैठे हैं, कोई वैष्णव बैठा है, गुरु जी बैठे हैं और कोई व्यक्ति आया उसको कोई इसी से डांट रहा है, तो मूर्ख है, उनको ज्ञान नहीं और गुरु जी वहां पर बैठे हैं, ये क्या हुआ? समझ आए ना? पिताजी बैठे हैं उनके सामने दूसरों को शासन करके डांट रहे हैं या मालिक बनकर के कुछ दे रहे हैं, अरे तुम्हारा मालिक तो ये बैठा है और उसके सामने उसको आदर नहीं करते, अवज्ञा करते हैं, तो ये विश्व ब्रह्मांड के जो प्रभु हैं इनको स्टैचू समझ करके तुम ऐसा कर रहा है, इसलिए तुम सेवा करने का अधिकारी नहीं है। आज हो रहा है हरिचंद सब भी मंदिर में घुस, क्या करेंगे? यही तो करेंगे और मरेंगे। पहले उस अधिकार पर आए, उनको समझे जी ठाकुर जी क्या है, विग्रह क्या है। अभी अभी आपको सुनाया माधवेंद्रपुरी जी ने, कुछ सुनाया ना कथा, उन्होंने कहा जी हमको यहाँ से निकालो, हमारी ये सेवा करो, देखो तो हमारे कान में छेद है, हमको ये कुंडल नहीं बना सकता। ठाकुर जी अभी जयपुर में वो ठाकुर जी है और कुंडल भी हुआ है, साक्षी देने के लिए 1000 मील दौड़ करके गए पीछे 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 साक्षी देने के लिए। पता नहीं ये सब भावुकताएं हैं, ये सब भक्ति कार्य नहीं, गलत बात है, भक्त ऐसा नहीं मानता। इसलिए जिसको भक्ति करनी है, प्रेम करना है, तो ये ऐसा साधन करके चले, नहीं तो बीच में अटक जाएगा। अच्छा, एक तो हुआ सेवा अपराध, इसे बचे। एक होता है नाम अपराध, नाम करते हैं, नाम के प्रति अपराध मत करो। ये नाम अपराध क्या है? 10 है, अब इसको बतलाएंगे तो सारा चला जाएगा, इसलिए ये समझो। वैष्णव की निंदा मत करो, संतों की निंदा मत करो, गुरु जी की अवज्ञा मत करो, भगवान का नाम और सब साधन जितना है काली दुर्गा का पूजा या और सदाचार ये सब नाम के बराबर है, ऐसा मत समझो। नाम लेते हुए आलस्य मत करो, नाम में इतनी महिमा बतलाई गई, एक नाम करने से उसका संसार पूरा दूर हो जाता है और उसको सर्व सिद्धि हो जाती है। ये सब बेकार की बातें हैं, वो हुआ है कुछ तो रुचि बढ़ाने के लिए ऐसा कर दिया। जैसे पता है ये घोड़ा कोई आसमान में उड़ रहा है, अरे घोड़ा कोई आसमान में उड़ता है, अरे ये तो हनुमान जी जैसा वीर है, हनुमान जी जैसा वीर हो जाएगा। ये समुद्र को लाल, ये सब कुछ में शेर है, शेर बब्बर ये सब तुलना मूलक के लिए ये सब आ गया। तो वैसे ही नाम की महिमा जो शास्त्रों में बार भक्ति की महिमा दी गई है ये सब उतनी नहीं है। अरे उसमें ये है, सवेरा हो गया बहुत हो गया, कितना कितने मिनट,
50 मिनट 55 मिनट हो गया।
ये प्रसंग थोड़ा सा बताया तो अरुचिकर तो नहीं हो रहा है जिसको भक्ति की जरूरत है इन सब पर विचार, नहीं तो भोजन में उन्नति नहीं होगी। तो वैसे ही बस कभी किया कभी नहीं किया, अस्त माने उस धारा से धारा प्रवाह रूप में, इसलिए मैं ऐसा बतला रहा हूँ कि हम लोग ठीक ठीक अपने गोल तक पहुंच सके, भगवान के प्रेम को पाए। जहां जहां कोई बाधा है उसके लिए ये सब शास्त्रकारों ने भजन करके देखा जी यहाँ पर ये नुक्स है तो उसको दूर करने को, आप लोग भी इसको चेष्टा करेंगे। ऐसे नमापराध शरीर में अंधता और ममता, मैं और मेरापन का भाव मत रखो, इसके अंदर में है आत्मा, ये शरीर जाएगा अवश्य जाएगा, कोई नहीं रोक सकता, विश्व की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकता। हाँ भजन के प्रभाव से ये शरीर को छोड़ करके जो शरीर जो समय मिलेगा वो नहीं नष्ट होता, जैसे हनुमान जी का शरीर, नारद जी का शरीर, ध्रुव जी का, और ऐसे वो अदल बदल नहीं होता, वो ऐसे इसी से बैकुंठ और यही जहां जहां भी जाना होगा वायु की गति से चारों तरफ उससे भी अधिक हो जाएंगे, यहां तक बैकुंठ की गति इसी शरीर से हो जाती है, उसमें ध्वंस परिवर्तन कुछ नहीं होता। इसलिए नमापराध से दूर रहो। शास्त्रों में जितनी भी नाम की महिमाएं लिखी गई है वो एकदम पूर्ण सत्य बल्कि आंशिक रूप में लिखी गई, पूरा नहीं लिखा गया नाम का प्रभाव क्या है, इसलिए उस पर विश्वास पूर्ण रखो। जो शास्त्र में जो नाम की महिमा दी गई वो सब सत्य, गुरु जी की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, भूल करके भी उनको मनुष्य मत समझो। कृष्ण भी तो टट्टी जाते होंगे दिखलाने के लिए और रोते होंगे, उनको भूख लगती थी, चोरी भी करते थे और लोगों से लड़ते भी थे, पक्षपात भी करते थे, उनको साधारण मनुष्य मत समझो, वो ऐसा अभिनय कर रहे हैं, अभिनय करना यथार्थता एक नहीं है, इसलिए गुरु को ऐसा मत समझो। यद्यपि सब गुरु एक बराबर नहीं होते हैं, कुछ लोग निम्न अधिकारी के भी गुरु होते हैं जो कि नाम का उपदेश दे देते हैं, सिद्धि अभी नहीं है, उनको भी मान लिया गया, जहां ये भगवान के तरफ में ले चल रहे हैं इसको भी भगवत स्वरूप ही मान लो। किंतु गुरु कौन है, नारद जी जैसे लोग जिसके हाथ ऐसा रख दिया और जो कुछ जाओ तुम्हारी सब सिद्धि हो, समस्त वेद की विद्याएं सबको आ जाए, उनको कृष्ण प्रेम अभी हो जाए, वो कुछ उत्तम अधिकारी वैष्णव जो गुरु है वो अलग है। किंतु इस गुरु को भी जो थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं इनको भी सम्मान देना उचित है, कर्मी लोग भी अपने गुरु को सम्मान दें। तो यथार्थ जो नाम की दीक्षा और मंत्र देने वाले हैं इनके प्रति क्यों नहीं याद रहे, जो थोड़ा सी बढ़े हैं उनका भी हम कृतज्ञ हैं, किस भी तरह से हमारा मोड़ को उन्होंने भगवान की तरफ मोड़ा है, और जो शिक्षाएं दे रहे हैं जो वहां तक ले जा रहे हैं ये सबको सम्मान यथार्थ उचित देना चाहिए। ये एक हुआ, और एक होता है वैष्णव अपराध,
अपराध में आ गया
नहीं, विशेष रूप से है वैष्णव अपराध है तो उसमें तो भी, और एक है भगवत अपराध, भगवान के प्रति अपराध, वैष्णव के प्रति अपराध, एक होता है नाम के प्रति एक सेवा, ये चार प्रधान है। कभी समय मिलने पर इसको विशेष रूप से बतलाऊंगा। अब इसमें जो सेवा अपराध है ये हरिनाम करने से, प्रार्थना करने से, ठाकुर जी की सेवा करने से ये तो सहज में दूर हो जाएगा, ये अत्यंत अपराध नहीं है, ये थोड़े से प्रयास से इसे हम बच भी सकते हैं और हरिनाम के द्वारा स्तव स्तुति के द्वारा ये सब चीजें दूर हो जाएगी। वैष्णव का अपराध बड़ा भयंकर है, वैष्णव कौन है, जिन्होंने नाम का आश्रय ले लिया है नाम को ही स्वयं भगवान समझते हैं। कुछ तत्व ज्ञान भी उनको हो गया है, ये जड़ है ये चेतन है, और कुछ संबंध ज्ञान भी हो चुका है। संबंध ज्ञान मैंने क्या, मैं दास हूँ वो प्रभु है, कौन किस्म के हम दास हैं, कौन तरह के प्रभु हैं, ये भी थोड़ा सा ज्ञान हो गया, भक्ति राज्य में कुछ प्रवेश कर सकते। और तीसरे जो है वो मध्यम अधिकारी में आ गए हैं, ये मध्यम अधिकारी का पहला, मध्यम अधिकारी थे और उसे उत्तम अधिकारी, उसमें भी उत्तम अधिकारी में हंस परम हंस
कुटीचक
बहुचक बहुत प्रकार के हैं, बहुत बहुत सूक्ष्म विचार है। सुखदेव गोस्वामी जी भागवत हैं, किंतु नारद जी उनसे परम भागवत हैं, इसका सब विचार है। सब सभी बराबर नहीं है, तुलसी के पत्ते सब बराबर होने पर भी वैष्णव सब एक बराबर नहीं है, और सबको लीता पोती कर करके सब पापड़ बेल दिया एक साथ में, सभी एक हैं, अपराध होगा। एक वेश्या को एक माँ को दोनों का है, दोनों तो महिला है, दोनों के एक सिंहासन पर, दोनों का जो आदर करते हैं ये पार्थक्य नहीं समझते हैं, उनका ये माता के प्रति अपराध हो जाता है। इसी तरह से वैष्णवों को के प्रति कोई अपराध ना हो, उसके लिए बतलाते हैं किसी वैष्णव पर तनिक भी कोई प्रहार मत करो, विशेष करके जिनको संबंध ज्ञान हो गया है, हरिनाम करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान पर आश्रित हैं, उनका कभी भी प्रहार मत करो, उनकी कभी भूल करके निंदा मत करो, किसी प्रकार से निंदा मत करो वैष्णव। यदि दोष भी है तो दोष मत देखो, क्यों, भगवान ने कहा पीछे सुराचारो भजते माम अनन्य भा साधु रे वसा मंतव्य सम्यक व्यवस्थित। वो कुछ दिनों कहीं बाद में ठीक हो जाए, क्योंकि वो बीस का जो दांत था वो तोड़ दिया गया है, अब वो पाप नहीं करना चाहता, हो गया वो उसके लिए अनुताप करके उसी से वो शुद्ध हो जाएगा। उसके लिए तुम निंदा मत करो, तुम उसके गुणाइयों को देखो, गुणों को देखो, और नहीं तो उसे बच करके चलो, निंदा मत करना। जो बुरे आदमी है उनकी भी निंदा मत करो, क्योंकि बुरा निंदा करने से क्या होता, उनकी बुराइयां हमारे अंदर में चली आएगी। इसलिए खबरदार कभी किसी व्यक्ति की नहीं, वैष्णव की तो बात दूर है, इसलिए मत करो, और खबरदार द्वेष मत करो, उनका अहित करने की चेष्टा से उनके प्रति जो व्यवहार होता है उसको कहते हैं द्वेष, द्वेष मत करो, और उसका अनादर मत करो। अनादर माने के आदर तो नहीं करते हैं, अनादर भी करते हैं, आदर नहीं करते हैं ये अनादर, ऐसा नहीं, आदर करना पड़ा दे करके उठ करके खड़े हो, जब आ रहे हो पधारिए, जब जा रहे हैं उनके दो कदम उनके पीछे चल करके चलना चाहिए, पानी पियेंगे पानी लेकर के रखिए, आदर करो, अनादर वही करेंगे तभी जाएगा, इसलिए अनादर मत करो। निंदा और मारपीट और ये सब चीजें तो ये अलग रहे, अनादर भी मत करो। कुछ आदमी तटस्थ रहते हैं, निंदा भी नहीं करेंगे आदर भी नहीं करेंगे, हम तटस्थ, तटस्थ रहना भी तुम्हारे लिए खतरनाक है, वैष्णव के प्रति ठाकुर जी और भगवान के प्रति तटस्थ नहीं रहना है, ये निर्विशेषवादी और द्वैतवादी होते हैं, जिसको हमारे आचार्यों ने खंडन करके निरस्त किया, तटस्थ कभी नहीं रहना चाहिए भक्ति से। और क्रोध अलग करो वैष्णव पर, खबरदार मत करो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्रोध किसी पर मत करो, किंतु वैष्णव यदि हो गया तभी क्षमा है, उसका तो निराकरण हो जाए, किंतु वैष्णव पर जो हरिनाम करने वाले हैं शुद्ध रूप में भगवान पर आश्रित हैं, जो कुछ बढ़ चुके हैं ऐसे वैष्णव पर खबरदार क्रोध न करो। और वैष्णव के मिलने पर यदि आनंद नहीं होता, हर्ष नहीं होता, प्रसन्नता नहीं होता, ये भी अपराध है, और की तो बात क्या समझ रहे हैं ना, वैष्णव को देखते ही चित्त प्रसन्न हो जाए ये बात ठीक है, और यदि देख करके आ रहे हैं बस तो ऐसा होगा। ये जो है छह प्रकार के वैष्णव अपराध, इससे भी बचो, अनजान में भी होगा तो गड़बड़ करेगा, आग भी देखे तो उसमें जले जलाएगा, बहुत भीषण चीज है, इसलिए प्रार्थना कीजिए वैष्णव के प्रति, क्यों भगवान की महत्ता, नाम की महिमा, भगवान की सेवा की बातें, उनकी कथाएं ये वैष्णव भी तो सुनाते हैं, और उनके प्रति ऐसा होगा यदि भूल से भी हुआ, भूल से तो नहीं, आजकल भूल से नहीं होता, जान बुझ कर ये हमारी पार्टी है, ये हमारी पार्टी है, भक्तों की कोई पार्टी नहीं, नाराजी कौन से पार्टी में है, सुखदेव गोस्वामी कौन पार्टी में है? हम लोग की पार्टी है, यही सब हमारी पार्टी है। भक्त जहाँ पर हरिनाम करते हैं यहाँ हरिनाम होता है, जो हरिनाम करता है सब गुरु का आश्रय करता है, सभी लोग हमारी पार्टी के हैं। हमारा वंश बढ़े, वो उस दल के हैं और हमारे गुरु जी तो इस दल के हैं, कभी उनको यहाँ पर मत आने देना, उनका नाम हम नहीं सुनना चाहते हैं। अरे वो बहुत जरा उन्नत है, उन्नत से क्या है, हमको तो पार्टी बाजी अपना दल बढ़ाना है, भक्ति का नहीं। ये गड़बड़ है, इन सबको देख करके विचार करके चलना। आज जरा समय हो गया, डॉक्टरों ने हमको निषेध किया है, हमको बार बार निषेध कर रहे हैं, इसलिए आज यही पर समाप्त करता हूँ, कल इसके बाद में कुछ। आप लोग उत्साह के साथ में इन चीजों को धारण करेंगे तो भक्ति में है। मैं तो गुरु का शिष्य है, ये आज तक कभी नहीं हुआ, अब होने लगा। पहले लोग था जो अपने शिष्य को आदर नहीं देते थे, दूसरे के शिष्य को अधिक आदर देते थे। जैसे अपना बेटा आया, दूसरे का एक बेटा आया,
तो ज्यादा
बेटे को लौट करके दूसरे के बेटे को छाती से ये है क्रम ना,
ठीक है।
ऐसा ऐसा दाता नहीं आएगी तो वैष्णव धर्म नहीं है। ये वैष्णव धर्म में ये कैंसर और टीवी भगवान इसे रक्षा समाप्त करता हूँ। यदि कोई कड़ी बात हमारे मुख से निकल गई है तो आप लोग इसके लिए क्षमा। जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय गोपाल, जय
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Thank you.